The concretized banks of the Sabarmati and the undulating roads running along it have become a symbol not just of urban planning, but also of the much-touted Gujarat model of development. But the latter is under pressure, with successive rights-based agitation spotlighting different lacunae. The latest is the Una Atyachar Ladai Samiti that emerged as a reaction to the Una atrocity in July and has since gone on to protest a plethora of issues plaguing Dalits. Its firebrand leader Jignesh Mevani explains the ideas and urgency behind his demands. Jignesh, what is it about the Una tragedy, about the Una atrocity that galvanized you into leaving everything else and starting this movement?
मैं दलित आंदोलन में पिछले 7-8 साल से जुड़ा हूँ और एट्रोसिटीज़ की बहुत सी वारदातों में गया हूँ. उसके फैक्ट्स फाइंडिंग्स रिपोर्ट तैयार किए, छोटे मोटे पेरिडिकल्स में इसके खिलाफ उसमें लिखा, उसके बारे में लिखा भी है, रैलियाँ भी निकाली, धरने भी निकाले. लेकिन जिस तरह का दलित रिस्पॉन्स इस बार देखने को मिल रहा था, जैसे कि बहुत से जिलों में, तहसीलों में से, गाँव गाँव में से लोग उठ खड़े हुए, जिस तरह से वो वीडियो वायरल हुआ, मेन स्ट्रीम मीडिया में हमारी आवाज़ कहाँ आती है? एक तरह का एक व्यू है दलितों में जो सही भी है, तो वो सोशल मीडिया को एग्रेसिवली यूज करते हैं. तो जिस तरह से फेसबुक और पर्टिकुलरली व्हाट्सएप पे ये वीडियो सर्कुलेट हुआ और जिस तरह से हजारों की तादाद में लोग उठ खड़े हुए और सड़कों पर उतर आए और यहाँ तक कि कुछ लोगों ने तो बसें भी जलाई, तो जो एग्रेसिव दलित रिस्पॉन्स देखा, तो मैंने ऐसा सोचा हम लोगों की टीम ने, कुछ 4-5 यंगस्टर्स ने मिलकर, कि केवल ये बात ऊना तक सीमित न रह जानी चाहिए. फिर ये सोडा बोतल का जो वो उभार आता है, फिर वो चला जाता है और दूसरी एट्रोसिटी की घटना होती है, फिर हम लोग खड़े होते हैं, रैली निकालते हैं, आवेदन पत्र सबमिट करते हैं, फिर बात खत्म हो जाएगी. या तो हम लोगों को लगा कि इस बार हम एजेंडा सेट करें कि न केवल ऊना में न्याय दो, सोशल जस्टिस भी मिलना चाहिए, इकोनॉमिक अपलिफ्ट भी हमारा होना चाहिए. तो ऐसी कौन सी डिमांड से सरकार के सामने रखे, एजेंडा हम सेट करेंगे, वो हम लोगों ने तय किया.
सो लेट्स लुक एट योर एजेंडा. वन ऑफ द की थिंग्स इन योर एजेंडा इज एन अल्टरनेटिव मॉडल ऑफ डेवलपमेंट व्हिच इज बेस्ड ऑन लैंड रिफॉर्म, एंड लैंड रिफॉर्म इन अ वे दैट आई थिंक यू वांट 5 acres ऑफ लैंड टू बी गिवन टू एवरी दलित फैमिली इन गुजरात, राइट, फ्रॉम द गुजरात गवर्नमेंट. एक्सप्लेन द रैशनल, व्हाट डू यू थिंक दिस विल अचीव?
I've been working for the implementation of land reforms policy for the past 6, 7, 8 years. And in this period, I've seen that thousands and thousands of acres of lands have been allotted to Dalits, but only on paper, as if they were going to cultivate it on a piece of paper. This is mockery of their plight. So actual physical possession, even after decades, is not given, resulting into a scenario where I am not able to cultivate the land I'm bona fide owner of, which is shocking. So, you know, I've raised this kind of issue for the past 6, 7, 8 years, filed a PIL in the High Court, nothing is coming out of it. So, land has always been the issue I've been working on. The whole dominance of upper caste in rural India is primarily because of the land control ownership. Of land. So, many of the atrocity cases are linked with land. Secondly, it has to do with creating individual, you know, it has to do with an alternative model of development. How? Sari ki sari sarkar hai, corporate loot ko chhoot de rakhi hai. और एक तरह से पागलों की तरह एक तरह से इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है. वो इंडस्ट्रियल आउटपुट खरीदेगा कौन जब गांव में परचेसिंग पावर ही नहीं है? तो मैं ये कह रहा हूँ कि जमीनों का आवंटन भूमिहीन क्लास को हो, केवल दलित कास्ट को नहीं हो. दलितों को
ऑल द लैंडलेस पीपल,
भूमिहीन दलितों को 5 एकड़ जमीन तो मिलनी ही चाहिए, लेकिन पूरे देश में लैंड रिफॉर्म्स होने चाहिए. यदि लैंड रिफॉर्म्स होता है तो जो लोग को जमीन मिलती है उनका खुद का परचेसिंग पावर बढ़ेगा. आप मैं यदि आपके खेत में मजदूरी करता हूँ, 8 घंटे के 120 मिलते हैं, तो मुझे 8 घंटे के 120 में ही दिलचस्पी है. लेकिन यही टुकड़ा मेरे नाम पे होता है तो मैं अपना खून पसीना बहा के वहाँ पे ज़्यादा उत्पादन हो ऐसा एफर्ट लगाऊंगा, तो ओवरऑल प्रोस्पेरिटी बढ़ेगी, जिसकी वजह से परचेसिंग पावर बढ़ेगा, तो इंडस्ट्रियल आउटपुट की भी खरीदी होगी.
इज देयर इनफ सप्लाई ऑफ लैंड?
कैसे प्रैक्टिकली ये मुमकिन है?
पॉपुलेशन 45 लाख दलित पॉपुलेशन इन गुजरात,
लाखों की तादाद में दलित है. मैं तो सरकार को ये कह रहा हूँ, 5 एकड़ नहीं दे सकते, नो इश्यू, 3 एकड़ दो. सारे भूमिहीन दलितों को नहीं दे सकते, तो आप बताओ कितनों को दे सकते हो? लेकिन बांटो तो सही. मैं तो यहाँ तक भी कहने को तैयार हूँ,
लैंड है
हजारों की हजारों एकड़ जमीन, हर एक जिले में, हर एक तहसील में गवर्नमेंट वेस्टलैंड को कोटा में से बांटी जा सकती है. गवर्नमेंट वेस्टलैंड वेस्टलैंड नहीं होती, वो एग्रेरियन लैंड है.
इट इज एग्रेरियन लैंड.
इट इज डिफाइंड अंडर यू नो इन रेवेन्यू टर्मिनोलॉजी इट इज डिफाइंड एज गवर्नमेंट वेस्टलैंड, बट इट इज एग्रेरियन वेस्टलैंड. सो देर इज अ प्रोविजन इन गुजरात अंडर द रेवेन्यू लॉ दैट ऑल द गवर्नमेंट वेस्टलैंड कैन बी अलॉटेड टू एससी एसटी एंड ओबीसी, राइट? सो दैट प्रोविजन इज वेरी मच देयर. Thousands and thousands of acres of lands are lying in every district, every block. One, two, there is more than 1 lakh bigha of land which can be allotted from the Bhudan land quota. Third, we have Gujarat Agrarian Agriculture, sorry, Gujarat Agricultural Land Ceiling Act. And fourth, दलील के तौर पे मान के चले, assume for the sake of argument, there is no provision under law, there is no ceiling law, there is no Bhudan land, there is a provision under SC ST subplan कि सरकार खरीद कर भी दे सकती है, तो बांटो.
Are you saying that the community or a lot of people in the community, Jignesh, are willing to be farmers? Do they have the wherewithal to become farmers tomorrow,
yes,
if the land were to come?
Of course.
Or will this land be sold at the first opportunity?
जिस तरह की political economy है और जिस तरह से agriculture sector को खत्म कर दिया है गुजरात में और पूरे देश में, definitely ऐसी नौबत तो आएगी कि जमीनों का आवंटन होने के बाद भी कुछ लोग बेच देंगे, बहुत बड़ा तबका भी उसका बेच दे सकता है. न केवल इतना, मैं तो ये भी जानता हूँ, मैंने मेरे पब्लिक लाइफ के काम की शुरुआत गुजरात के फार्मर सोसाइटी की रिसर्च से हुई. दलित आंदोलन में तो उसके बाद आया, तो ऑलरेडी जिनके पास 5 एकड़ जमीन है, 5 एकड़ के 15-15 एकड़ जमीन जिनके पास, वो लोग भी सुसाइड कर रहे हैं, गुजरात में भी कर रहे हैं, महाराष्ट्र भी कर, हर जगह पे कर रहे हैं. लेकिन दलित आंदोलन जो कहीं ना कहीं मनुवाद, मुद्दाबाद, ब्राह्मणवाद, मुर्दाबाद के नारों पर चौकअप हो गया था, अब वक्त आ गया कि वो खुलकर सांस ले और रोटी कपड़ा और मकान की भी बात करे. 5 एकड़ जमीन का आवंटन होने के बाद गुजरात की सरकार को कहेंगे कि हमको मिनिमम सपोर्ट प्राइस दो, अग्रेडिन इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करके दो, नर्मदा की केनालों का पानी दो, वो सारी डिमांड्स करेंगे. लेकिन पहले एक इकोनॉमिक इश्यू की बात तो शुरू हो दलित आंदोलन में.
यू मेड सम पीपल हु सपोर्ट यू टेक एन ओथ सेइंग दैट दे विल नॉट क्लीन द गटर्स एनीमोर, दे विल नॉट क्लीन डर्ट, दे विल नॉट एंटर गटर्स, दे विल नॉट लिफ्ट एंड डिस्पोज ऑफ एनिमल कार्कसेस. ओके, नाउ द क्वेश्चन इज दैट दिस इज अ डिक्लेरेशन, right? This is a statement, this is a declaration, we are not going to do this anymore. But what are the plans you make? Because this is a source of income, no matter how paltry, and I know it is rubbish income, okay? It's very little money, but it is a source of income and livelihood. What is the rehabilitation, the option program that you're making available to people who want to follow you?
So, wo samudaya, Dalit samudaya ke log, jo mere kehne par, अपनी मर्जी से शपथ ले रहे हैं डॉक्टर अंबेडकर के नाम से, अभी पूरे जीवन काल में कभी मेला उठाएंगे नहीं, ये मृत पशु को निकाल का काम करेंगे नहीं. सबसे पहले एक तो वो अपनी चॉइस से ले रहे हैं, दूसरा डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर ने तो यहां तक कहा है कि भूखे मरो, लेकिन जाति व्यवस्था ने ये जो काम आपके ऊपर थोपे है जिसकी वजह से आपको अनटचेबिलिटी मिली वो छोड़ दो. तीसरा, मैं उस दलित समुदाय को और सरकार को दोनों को कह रहा हूं कि सारी की सारी गवर्नमेंट वेस्टलैंड पार्टी की प्रोविजन है तो उनको दे दो. मैं तो दलित समुदाय को यहां तक कहता हूं कि यदि दलित आंदोलन एक आत्मसम्मान की लड़ाई है, यदि ये स्वाभिमान का आंदोलन है, तो जाति व्यवस्था ने आपके ऊपर जो मैले गंदे काम थोपे हैं जिसकी वजह से आपको अनटचेबिलिटी मिली, यदि उस कामों के प्रति आपको घृणा पैदा नहीं होती, तिरस्कार का भाव पैदा नहीं होता, तो आपकी आत्मसम्मान की भावना कैसे प्रज्वलित होगी? आप कैसे दलित आंदोलन का हिस्सा बनेंगे?
So Jignesh, I hear what you're saying, and yet the Dalit Chamber of Commerce and Industry has actually is not comfortable with these ideas that you're propagating, because according to them, to skin animal carcasses, to work in the leather industry, this is something that the Dalit community or some people in the Dalit community know. They are experts at this. Can that not be turned into an economic advantage and opportunity? When people listen to what you're saying, then that advantage is also gone away. I'm saying everything, even a disadvantage can be something that you can barter and negotiate, isn't it?
31 जुलाई के अहमदाबाद के दलित महासम्मेलन में जब ये शपथ लिए गए, पहली बार हजारों की तादाद में, दलित आंदोलन की इतिहास में पहली घटना थी कि मृत पशुओं के निकाल का काम नहीं करेंगे. उस वक्त में मैंने साफ कहा था, जो लोग एंटरप्रेन्योर की तरह ये काम कर रहे हैं कैपिटल पैदा करने के लिए, खुद के लिए अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है, चॉइस से कर रहे हैं, वो करें. लेकिन जिस तरह से ऊना में मारा गया, काम छोड़ने की वजह से मारा गया, उससे साफ पता चलता है कि उनके ऊपर इम्पोज किया गया है जाति व्यवस्था के द्वारा, तो वो लोग छोड़ दे. और तीसरा, अनटचेबिलिटी वाला पार्ट इसलिए कि उसके साथ गंदगी जुड़ी हुई है, तो यदि टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस होती है तो आगे और कुछ रास्ता भी निकल सकता है.
सो यू आर ओपन टू द आइडिया?
ऑफ कोर्स.
Okay.
So, and everybody has every right to be critical about me and my views.
And people have been critical. Yes, in fact, yes. You know, people like Martin McQuinn have been critical. Other activists who have been working in Gujarat for the cause of the Dalit community have not 100% supported you. Why do you think that is?
There could be various reasons. One of the reasons could be regarding my method, my strategy to mobilize people, and
what do you think about your method bothers people?
Maybe I'm quite aggressive in my programs, not just in speeches. I'm in and jaisa ki aur it is paid. जैसे कि अहमदाबाद जिले का धौलका तहसील का सरोड़ा गांव 10 साल पहले जमीनों का आवंटन हुआ केवल कागज पे लिख लिख कर थक गए वो लोग भी उनके बिहाफ पर मैं भी लिख लिख कर थक गया कंसर्न एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट सब डिविजनल मजिस्ट्रेट रेवेन्यू डिपार्टमेंट सीएम ऑफिस डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर कुछ नहीं हो रहा था सारी दलित बहनों को बोल दिया अब कलेक्टर को मेमोरेंडम सबमिट करने नहीं जाएंगे अहमदाबाद की सड़कों पर सो जाएंगे सो गए दूसरे दिन लैंड मेजरमेंट का काम चालू हो गया रिजल्ट मिला 35 दिन से सफाई कर्मियों का आंदोलन चल रहा था 1500-2000 सैनिटेशन वर्कर्स वाल्मीकि समुदाय के वो लोग वो अपने स्ट्राइक पर बैठे थे उसमें मैं इन्वॉल्व हुआ सारे लोगों को बोला इनकम टैक्स चार रास्ता बंद कर दो एक घंटे के लिए बंद कर दिया सरकार ने अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने शाम को बोल दिया 3 महीने सारे लोगों को परमानेंट करेंगे तो रिजल्ट मिल रहा है मेरी मेथड के जरिए
एंड येट देयर इज अ सेंस दैट यू आर ओपन टू वायलेंस
No, I am not open to violence. मैं कानून और संविधान के दायरे में रहकर ही काम करूंगा वो दायरा मैंने कभी तोड़ा नहीं
But you have said,
just a second.
Okay.
लेकिन मैं ऐसा जरूर मानता हूं कि जिस तरह से सरकार की इतने सालों में भूमिका रही जिस तरह से एट्रोसिटी के कानून को करीब करीब इम्प्लीमेंटेशन के जरिए खत्म कर दिया गया और दलितों को न्याय मिल ही नहीं रहा है गुजरात की बात करें तो रेट ऑफ कन्विक्शन केवल 3% है ठीक है एक दलील ऐसी चलती है कि एट्रोसिटी की बहुत सी फ्रिवलेस कंप्लेंट फाइल होती है दलील के तौर पर मान के चले कि 50% गलत कंप्लेंट दर्ज हुई दलील के तौर पर मान के तो बाकी के 50 केस में तो न्याय मिलना चाहिए न्याय तो केवल 3 लोगों को मिलता है ठीक है तो ये जो परिस्थिति है और दलित आंदोलन का अब तक का जो अनुभव है दलित समाज का जो अनुभव है तो मैं ऐसा एक से ज्यादा बार कह चुका हूँ आज भी कहता हूँ स्वच्छता के साथ कहता हूँ कि जो जातिवादी तत्व जो कास्टिस एलिमेंट्स आपको फिजिकली मारते हैं उनको शॉक ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए वो मैं कहता हूँ लेकिन बाय एंड लार्ज मैं कानून और संविधान के दायरा तोड़ने की बात या हिंसा की बात नहीं करता
सो यू शुड फाइट बैक यू शुड हिट बैक
यू शुड हिट बैक बट इट डजंट मीन आई फॉर आई काइंड ऑफ थिंग इस एक पर्टिकुलर लाइन को लेकर डबिंग में समवन हू सपोर्ट्स वायलेंस और प्रपोजेस प्रोपोगेट्स वायलेंस इज नॉनसेंस
हाउ डू यू रिव्यू what the constitution has managed to deliver and what the laws based on the constitution that have been enacted in favor of the Dalit community
we have a ultra liberal constitution colonial state got replaced with a tiny minority of upper caste upper class elites hegemonizing all the organs of the state which is intact foundation of which is land and therefore land reforms are vital if you want to dismantle this feudal casteist hegemony based socio economic structure and create an egalitarian socio economic order because through which our constitution can actually deliver therefore land reforms are vital to constitution to hai lekin jis tarah ke forces ka uske upar kabza hai state ke sare organs par to wo deliver nahi kar pa rahe
so you are saying that if land reforms and this route had been taken and taken yeah. more seriously pan india
kuch fark to padta definitely
and how do you weigh that against reservation
Well, reservation ki policy has helped Dalit community. There is no doubt about it. It has helped.
Have you benefited from it personally?
Of course. My father was digging dead cattle when he was 16 and 70. Today, I am not supposed to do it only because of reservation. सवाल ये है कि दलित आंदोलन केवल reservation के इर्द-गिर्द नहीं घूमना चाहिए, वरना वो middle class के दलित आंदोलन बनके रह जाता है। जैसे गुजरात की बात करें, तो 100 दलित यहाँ पर है यदि 7 दलितों को रिजर्वेशन का बेनिफिट मिलता भी है लेकिन बाकी के 93 का क्या ये 93 दलितों में से गांव में बसने वाले तो लैंडलेस है शहर में बसने वाले फैक्ट्रियों में जा रहे हैं तो क्या दलित आंदोलन ट्रेड यूनियन जमकर करने के लिए तैयार है क्या गाँव में दलित भूमिहीन दलितों को जमीन का आवंटन हो उसके लिए लड़ने को तैयार है तो दलित आंदोलन को उन 2 दिशाओं में काम करना होगा केवल रिजर्वेशन के इर्द गिर्द बातें उनका रेटोरिक रह जाए तो उससे इट्स नॉट गोइंग टू बेनिफिट
So you're saying it
लेकिन still reservation is very much required. ये तो हम लोग मानते ही है कि जाति व्यवस्था पहले आई तो पहले जाति व्यवस्था जाए बाद में रिजर्वेशन जाना चाहिए.
In the last year, year and a half, we have seen another agitation, not from a backward community, led by Hardik Patel, and we know he's cooling his heels in Rajasthan, and we saw the violence that erupted, and we saw how the state took its entire might and cracked down on that agitation. Do you feel that there may be parallels at all, any concerns?
See, mere sources se ye bhi pata chala hai ki ek point pe state ne tay bhi kiya tha mere upar sedition lagana. लेकिन कुछ मिल नहीं रहा है.
You've been detained a few times.
Yeah, I've been beaten many times, right? लेकिन मेरे खिलाफ स्टेट को कुछ मिल नहीं रहा है, कुछ मिलने वाला नहीं है. ठीक है, मेरे बैंक के अकाउंट में कुछ पैसा नहीं है. किसी पॉलिटिकल पार्टी और कॉरपोरेट ग्रुप्स के अभी चंदा लिया नहीं, लेने वाले नहीं है. जेन्युइनली दलित स्ट्रगल कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के साथ ही आगे बढ़ रहे हैं. और मैं तो मानता हूँ कि जिस तरह से कन्हैया कुमार के खिलाफ फर्जी मुकदमा दर्ज हुआ सेडिशन का, बिल्कुल उसी तरह से हार्दिक के खिलाफ भी जो मुकदमा दर्ज हुआ राद्रो का, वो फर्जी है. हार्दिक के साथ मेरे वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, उसके भी मेरे साथ सैद्धांतिक मतभेद हो सकते हैं. वो राजद्रोह का आरोपी नहीं है.
You don't have any anxiety on that front?
No, not at all, not at all.
Okay, let's change the
mood. That is what is actually troubling the state, how to handle me.
Chuvalnagar is a Dalit settlement in Ahmedabad. This is where Jignesh comes from. He started out as a journalist working with Gujarati periodical Abhyan and briefly the Dainik Bhaskar before upending it for political activism. This has made him dependent once again on his parents for bed and board. But that's not stopping the optimism.
Jignesh, journalism doesn't seem to be delivering the goods. You're 35 years old. You started as a journalist.
Well, it is a too much of cynical attitude to say so. I never said so. But
you've rejected it. Yeah. It's clearly not delivering the goods for you and what you want to achieve in life.
Actually, I should honestly admit this also, that I've never been a great or very impact, a journalist who created impact. But when you are like 23, 24, 25, you have that impression, you have that poetic, romantic idea of journalism. You change the society through your writings and articles and all, and it will have enormous impact on the life of poor people. But when it doesn't work out, you know. So then at one point I felt it is better to work as a grassroots activist than work as a full-time journalist. And beech-beech mein likhte rahenge. Of course, I mean, करियर खो देने की वजह से और एनजीओ वगैरह में नहीं जाना, वह भी एक क्लैरिटी थी फ्रॉम द डे वन, बिकॉज इट एमस्क्यूलेट्स योर पॉलिटिकल रिस्पॉन्स, राइट? एंड यू नो योर कंसर्न गेट्स यू नो अटैच्ड टू अ प्रोजेक्ट.
जिग्नेश, आई फाइंड द यूज ऑफ द वर्ड इमैस्क्यूलेट वेरी इंटरेस्टिंग. इट रिमाइंड्स मी ऑफ समथिंग आई हर्ड यू से, विच इज दैट इन एन इंटरव्यू यू सेड दैट इफ आई टू एड्रेस divisions between different communities and different castes, if you had two sisters, you would have liked one to have married somebody from the Valmiki caste, one to have married a Musalman, because that's the way to break the caste and religious barriers in this country. It's also a very masculine way of dealing with things.
Not at all. लेकिन मैं उसका explanation तो उसके पहले ये admit करूँ, I am part and parcel of this patriarchal system, society. तो मैं चाहे कितनी भी जेंडर सेंसिटिविटी दिखाऊं, ये कितनी भी प्रोग्रेसिव बात करूं, बर्तन तो मेरी माँ या मेरी भाभी ही धोती है, खाना तो मैं पकाता ही नहीं, जूठा तो मैं उठाता ही नहीं, तो ये मैं एडमिट करता हूँ. और न केवल एडमिट करता हूँ, ये पैट्रियार्कल का स्ट्रक्चर भी टूटना चाहिए. यदि एनाइलेशन ऑफ कास्ट होना चाहिए तो एनाइलेशन ऑफ पैट्रियार्की भी होना चाहिए. लेकिन वो वो जो बात है उसमें मैंने ऐसा कहा है कि यदि दो बहनें रहती तो मुझे अच्छा लगता, आई वुड हैव लाइक्ड इट, एक की शादी मुस्लिम फैमिली में होती, दूसरे की वाल्मीकि में। ये इसलिए कह रहा हूँ कि इंटरकास्ट मैरिजेस से यदि जाति निर्मूलन होने वाला है एज प्रपोज बाय डॉक्टर आम्बेडकर, इंटर रिलीजियस मैरिजेस भी होने चाहिए। हम तो दलित मुस्लिम एकता का नारा भी देते हैं, और दलितों के बीच में जो सबकास्टिज्म है उसको खत्म करने के लिए भी इंटर सबकास्ट मैरिजेस भी होने चाहिए। तो इस दृष्टिकोण से मैंने कहा है, अब ये कहने से तो हो जाने वाला नहीं, लेकिन आइडिया किस स्तर पे है तो कभी ना कभी इट विल टेक अ मटेरियल शेप।
सो इट्स वन स्टेप एट अ टाइम।
या
ओके, सो एंड आई थिंक द स्टार्टिंग स्टेप इज द एडमिशन।
या ऑफ कोर्स आई मस्ट हैव इंबाइब्ड एन नंबर ऑफ पैट्रियार्कल नोशंस एंड वैल्यूज, लेकिन आई एम रेडी टू एक्सेप्ट इट, तो उससे आगे रास्ता निकलेगा।
तो बर्तन धोने की प्लान
बिल्कुल करनी पड़ेगी, लेकिन लेकिन उसके लिए मेरी बहन को, मेरी भाभी को, मेरी माँ को मेरी गर्दन पकड़ के करवाना पड़ेगा। हम यदि नहीं सुधरते तो उनको सुधारना पड़ेगा। लेकिन ये चेतना के स्तर के ऊपर जो काम होना चाहिए उसमें पुरुषों को डेफिनेटली प्रोएक्टिवली करना चाहिए।
विद इन द दलित कम्युनिटी देर आर सब कास्ट स्ट्रक्चर्स एंड इवन रिजिड कास्ट बैरियर्स विद इन सब कम्युनिटीज विद इन द लार्जर दलित कास्ट। You know, there are so many reports, even when Dalits convert to Islam or to Christianity, burial ground mein jaake jo jagah milti hai, wo bhi caste ke hisab se baata jata hai.
Right.
How deep set
not
is
only this,
caste in
British
people's
parliament,
mind?
Not only this, British Parliament had to come up with a special legislation called Equality Bill in 2009 to deal with the persons, you know, who migrated from India to UK. And now have started subjecting Dalits to all kind of discrimination.
Right.
तो यही सवाल पूरे भारतीय समाज को सोचना है कि एक तरफ हम लोग ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं, न्यू लिबरलिज्म की बात करते हैं, और दूसरी तरफ जाति तो जिंदा है, वो तो मरने का नाम ही नहीं ले रही है। तो ये केवल दलितों का प्रश्न नहीं है, भारतीय समाज को ये सोचना पड़ेगा कि कास्ट इज द प्रॉब्लम ऑफ इंडिया, नॉट जस्ट दलित कम्युनिटी।
Do you think the young people who are interacting with you are open to these ideas?
Not greatly. लेकिन जिस तरह का हमारा ग्रुप है और हम लोगों के में जिस तरह की ओपननेस है कि सारी धारा के लोग हम लोगों के साथ आकर बैठ सकते हैं। अम्बेडकराइट्स भी वेलकम है, फेमिनिस्ट ग्रुप्स भी वेलकम है, लेफ्टिस्ट भी वेलकम्स है, सिर सिविल सोसाइटी इन जनरल के लिए भी एक तरह का सिनिसिज्म दलितों में कभी कभी होता है, क्योंकि नॉन दलित एक्टिविस्टों ने भी दलितों के मुद्दों के ऊपर जमकर काम नहीं किया। ये केवल लेफ्ट की बात नहीं, एक्टिविस्ट फ्रेटर्निटी की इन जनरल बात है। मैं गुजरात की भी बात करूं कि गुजरात के सारे एक्टिविस्ट को आप इतना पूछे कि पिछले 15 साल में अपने सरकार में जितने भी मेमोरेंडम सबमिट किए इसमें कितनों में दलित प्रश्न का जिक्र था, 99% केस में यू विल नॉट फाइंड इवन मेंशनिंग ऑफ दलित इशू।
सो आर यू सेइंग दैट द दलित,
जस्ट अ सेकंड, उसकी वजह से एक स्वाभाविक रूप में दलितों में सिनिसिज्म पैदा होता है, टिकता है और बढ़ता भी है। लेकिन हम लोगों का जिस तरह से ग्रुप है, सारे लोगों के लिए हम लोगों ने दिल के दरवाजे खोले हैं, तो आने वाले दिनों में नॉन दलित साथी जो संघर्ष के वो भी हमारे साथ खुलकर आएंगे, और ऐसा जब होगा तब दलितों के बीच के अंदर का ये सिनिसिज्म भी खत्म होगा कि नहीं केवल ब्राह्मण, हमारा विरोध ब्राह्मण से नहीं ब्राह्मणवाद से है। और हम लोगों के भी एक इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं, हमारे बीच में जो इंटर सबकास्ट मैरिजेस नहीं हो रहे तो वो एक लंबी लड़ाई है, और करेंगे हर एक मोर्चे पर करेंगे। I'm very optimistic about it.
You know, there's something happening in Maharashtra. The silent protests of the Marathas wanting reservations and now also wanting scrapping of the SCST Atrocities Act because of what happened in the Ahmednagar district. You have the Hardik Patel Patidar agitation that we've seen in Gujarat. How do you react to these agitations, which are the antithesis of the rights that you're claiming?
थोड़ी कैसी फील आती है मुझे, एंड आई एम नॉट वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट इट व्हेन आई एम प्लेसिंग इट बिफोर यू, लेकिन ऐसी फील आ रही है कहीं ना कहीं ये डीप रूटेड इंडिया की जो अग्रेडियन क्राइसिस है और ग्लोबलाइजेशन की इस मॉडल के दावों के बावजूद, अच्छे दिन के नारों के बावजूद जो नई एम्प्लॉयमेंट खड़ी नहीं हो रही, तो यूथ और गाँव की हमारी जनता वो बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड फील कर रही है। जैसे पाटीदार आंदोलन की बात करें तो पाटीदार समुदाय का जो छोटा किसान है, सीमांत किसान है, मार्जिनलाइज फार्मर्स, वो करीब करीब खत्म हो चुका है। दूसरी तरफ गुजरात की सरकार ने, मोदी साहब ने 32 लाख करोड़ के विदेशी पूंजी निवेश के दावे किए और 50 लाख एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने वाले थे, वो 2002 में जब CM बने तब भी 8 लाख अनएम्प्लॉयड यूथ था, आज 8.5 लाख है। तो वो वो जो फ्रस्ट्रेटेड यूथ है और गांव की जनता का जो फ्रस्ट्रेशन है जो एग्रीडियन क्राइसिस में आ रहा है, करीब करीब वही पैटर्न वहां पर दिखती है और फिर आपको आप उसको क्लास शेप नहीं दे पा रहे, आप उसको इकोनॉमिक स्ट्रगल का फॉर्म नहीं दे पा रहे तो गाली देते कास्ट के इश्यू के ऊपर, तो वो कहीं ना कहीं एंटी दलित सेंटीमेंट बनकर वो बाहर आता है। जिस तरह से वो महाराष्ट्र में वो एक दलित ने किसी बहन के ऊपर बलात्कार किया, वो तो यू नो आई एज अ दलित हेल्ड माई हेड इन शेम, वो तो किसी कीमत पे नहीं चलना चाहिए। लेकिन हमारे देश को और मराठास को ये भी सोचना पड़ेगा कि एवरी डे इन इंडिया 4.3 दलित वीमन आर रेप एंड नोबडी टॉक्स अबाउट इट। जिस तरह की मोमबत्तियाँ निर्भया के मामले में निकलती है उसी तरह का समर्थन दलित बहनों के बलात्कार के इश्यू को रेज करने वाले दलित एक्टिविस्टों को नहीं मिलता है। तो और जिस तरह से एट्रोसिटी को ख़त्म करने की बात कर रहे हैं, एक तरफ हमारी पार्लियामेंट उसकी प्रोविजंस को और भी स्ट्रिंजेंट बना रही है और दूसरी तरफ ये लोग कह रहे हैं कि इसको ख़त्म कर दो, व्हाट रबिश। लेकिन मैं भी कभी कभी मुझे भी डर लगता है इस इश्यू के ऊपर जमकर स्टैंड लूँ, क्योंकि ऐसा डर लगता है कि वहाँ पर मैसेज करना हो जाए, दलितों को टारगेट ना करे, जिस स्ट्रेंथ के साथ जिस बड़ी तगड़ी तादाद में वो लोग सड़कों पर उतर आ रहे हैं उनके खिलाफ कुछ भी बोले, मुझे डर महसूस होता है। वो खुलकर कहते हैं कि रिजर्वेशन के एक्ट को ख़त्म करो, तो दलितों को ये नाराज करने वाली चीज़ है, तो दलितों का रिएक्शन तो आएगा, दलित साहित्यकार बोलेंगे, दलित इंटेलेक्चुअल्स बोलेंगे, दलित जो ऑर्डिनरी कॉमन दलित वो भी सड़कों पर उतर आएगा। अब वो जब उतरेगा तो कहीं ना कहीं कुछ क्लैश होने की आशंकाएं रहती है, तो इट इज़ डेफिनेटली वेरी वेरी डिसअपॉइंटिंग।
How do you evaluate the role that Dalit-based political parties and leaders have played, whether it's Ramdas Athawale, whether it's Mayawati, BSP, RPI?
Dalit parties have really, really disappointed Dalit community at large. And, you know, मैं तो दो तीन एग्जाम्पल सबके बीच में रखता हूँ कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को हम लोग दलित मेन स्ट्रीम पार्टीज अपने हिसाब से दिखाते हैं, जैसे वो शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के बाबा साहब अम्बेडकर की बात करेंगे, लेकिन इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के बाबा साहब अम्बेडकर जिन्होंने किसानों और मजदूरों की पार्टी बनाई थी उसकी बात नहीं करेंगे। बुद्धिज्म वाले बाबा साहब अम्बेडकर की बात करेंगे, लेकिन स्टेट्स एंड माइनॉरिटीज के बाबा साहब अम्बेडकर की बात नहीं करेंगे, जिन्होंने जिसमें कहा गया है कि सारे की सारी जमीन और मेजर इंडस्ट्रीज का नेशनलाइजेशन हो जाना चाहिए। ठीक है, तो मनमाड़ के ऐतिहासिक सत्याग्रह में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि इस देश के दलित और श्रमजीवी वर्ग के दो प्रमुख शत्रु हैं, ब्राह्मणवाद और पूंजीवाद। उसकी भी मेनस्ट्रीम दलित पार्टियां बात नहीं कर रही, तो कहीं ना कहीं वो अम्बेडकरिज्म के नाम पे दलितों को छल रही है।
So are you saying there's disillusionment with the Dalit parties and Dalit leaders?
It's really, really painful. It is, you know, इसकी वजह से दलित causes suffered enormously.
What do you make of the efforts of the mainstream parties, whether it's the Congress or of the BJP, to woo the Dalit community, whether it is having snan with them, whether it is, creating the Ambedkar Memorial, Ambedkar statues, bigger and bigger and bigger?
Yeah, nothing but an attempt to fool Dalits, you know, all these years they've kept doing all these nonsenses, right? Statues after statues bana rahe, break the bridge ke naam de denge. दूसरी तरफ खेरलान जी होगा, ऊना होगा, हजारों एकड़ जमीन का आवंटन केवल कागज़ पर रह जाएगा, वही वाल्मीकि समुदाय के लोग गटर में उतरते रहेंगे, मरते रहेंगे। तो कांग्रेस हो, बीजेपी हो, इस तरह के दलितों को बेवकूफ़ बना के अलावा कुछ नहीं कर रही। गटर में उतरना पड़े ऐसा मैकेनिज्म को डेवलप करो, करो थोरोगोइंग लैंड रिफॉर्म्स, सारे के सारे सफाई कर्मियों को सातवा पगार पंच दे दो, हो जाए उनका पगार 70,000-80,000 लाख रुपया, तो उनकी नेक्स्ट जनरेशन वो झाड़ू नहीं पकड़ेगी, वो सब तो करना नहीं है। अब स्टेच्यू खड़ा करके क्या होगा?
Is this a turning point, you think? Or is
it is a turning point. जैसे कि ऊना की घटना के बाद तुरंत कुछ पत्रकार साथियों का इस तरह का एक उनको एक ऐसा फीलिंग आता था कि एक दो सम्मेलन हो गए, एक दो रैलियां निकली कि बात खत्म हो जाएगी, ऐसा नहीं है। 3 महीने से लगातार स्ट्रगल कर रहे हैं, इस स्ट्रगल में से कुछ अचीवमेंट्स भी मिली है, मोमेंटम आज भी जिंदा है, तो ये स्ट्रगल तो आगे बढ़ेगी।
जिग्नेश, I wish you all the very best. Good luck. You'll need lots of it to keep the energy going. All the best.
Thank you.
बहुत निकले मेरे अरमान, लेकिन फिर भी कम निकले।